आरवी की बात पर जज साहब हंस पड़े। अच्छा, वैसे मैं तुम्हें देखकर ही समझ गया था तुम ऐसा ही कुछ सोच रही थी। आरवी मासूमियत से बोली, और क्या सोचते, कानून से जुड़े लोगों को देखकर ऐसा ही ख्याल आना लाजमी है। अब आप दूध वाले थोड़ी हैं जिनसे रोज मिलना हो। अचानक अपने घर पर खाकी वर्दी वाले काले कोट वालों को देखकर डर तो लगता है ना। दिनकर जी हंसते हुए बोले, डरा दिया देवेंद्र तुमने हमारी बच्ची को। एक काम करो, दूध बेचना शुरू कर दो। ये सुन जज साहब और आरवी दोनों हंस पड़े। तभी जज साहब आरवी की ओर देखते हुए बोले, अब तो डर नहीं लग रहा? बिल्कुल भी नहीं, अब तो हम खुश हैं आपसे मिलकर भी, और इसीलिए भी कि अब हमें जान पहचान वाले जज साहब मिल गए हैं जो हमारी दादू के दोस्त हैं। कभी जरूरत पड़ी तो फट से आपके पास पहुंच जाएंगे विदाउट लॉयर। हमें लॉयर लेकर पैसे भी खर्च नहीं करने पड़ेंगे, सीधा आपसे मिलेंगे, खुद ही सब कहेंगे बिना लॉयर की मदद के, और आप फटाफट हमें फैसला सुना दीजिएगा, वो भी हमारे हक में। आरवी ने एक ही सांस में कहा। ये सुन जज साहब और दिनकर जी एक दूसरे की ओर देखकर आरवी की ओर हैरानी से देखने लगे। आरवी भौहें चढ़ाती हुई बोली, क्या हुआ? जज साहब बोले, तुम्हें फिर से मेरी जरूरत पड़ेगी। आरवी बोली, पड़ सकती है ना? दिनकर जी बोले, क्यों? क्या क्यों दादू, आपके पोते का कोई भरोसा नहीं? कभी उनका दिमाग खराब हुआ और उनके खराब दिमाग के चलते हमारे दिमाग की बैट बजी तो हमें जाना पड़ेगा ना उनको लेकर अदालत में जज दादू की, है ना जज दादू? जज साहब नाम ही सिर हिलाते हुए बोले, बिल्कुल नहीं, फिर जरूरत पड़े ऐसी नौबत आए तो तुम खुद ही अपनी अदालत में खुद ही फैसला कर लेना, खुद ही फैसला सुना देना, वो भी बिना वकील के। अब ना तो मैं कुछ कर सकता हूँ और ना ही मेरी अदालत। पति का दिमाग ठिकाने लगाने के लिए पत्नी की अदालत से अच्छी कोई अदालत नहीं, जहाँ ऐसी सुनवाई होती है कि पति के दिमाग का क्या, पूरा पति ही ठीक हो जाता है। तो पति तुम्हारा, अदालत तुम्हारी, फैसला तुम्हारा, मेरी क्या जरूरत है ना दिनकर जी? दिनकर जी बोले, हाँ, इस जज की क्या जरूरत, अंशु के लिए तो आप ही काफी हैं। एक पत्नी जितना अपने पति को ठीक कर सकती है उतना जज तो क्या, दुनिया का कोई शख्स नहीं कर सकता। जज साहब बोले, ठीक के साथ ठोक भी सकती है। आरवी दोनों की बात सुनकर हंस पड़ी। वो उनकी बातों पर ऐसे खिलखिलाकर हंस रही थी कि दिनकर जी और जज साहब उसे हंसता देख मुस्कुराने लगे। तभी आरवी हंसते हंसते बोली, पति लोग पत्नियों से इतना डरते क्यों हैं? ये सुन दिनकर जी और जज साहब एक साथ बोले, पता नहीं पर डरते जरूर हैं। आरवी बोली, दादू आप भी डरते थे अपनी प्रियतमा से? दिनकर जी बोले, मत पूछो, बीवी का नाम ही डर होता है। आरवी बोली, चलिए आपसे नहीं पूछती, जज दादू आप बताइए, आप भी डरते हैं? जज साहब बोले, जज हूँ जिसके आगे न जाने कितनों की सुनवाई होती है, पर मेरी बीवी की अदालत में आज भी मेरी नहीं सुनी जाती। आरवी मंद मंद हंसते हुए बोली, इसका मतलब आप सिर्फ घर के बाहर जज हैं, घर के अंदर जज कोई और है? जज साहब हाँ में सिर हिलाते हुए बोले, हाँ मेरी बीवी हैं, वो जज जिसकी अदालत में रोज मेरी पेशी होती है, जहाँ मेरी सुनवाई नहीं मुझे सुनाया जाता है। बीवी से बड़ा ना कोई जज और ना ही उसकी अदालत से बड़ी कोई अदालत, जहाँ फैसले सुनाए जाते हैं, ना मानो को सजा भी दी जाती है, और फिर ये भी कहा जाता है कि हमारी सुनता कौन है। दिनकर जी बोले, कभी सुनी है हमारी, जबकि उनकी ही सुनी जाती है। दोनों की ये बातें सुन आरवी फिर हंस पड़ी। ओ एम जी, मुझे तो दया आ रहा है आपके पतियों वाले हालात सुनकर, पर हाँ मेरे पति सब पतियों से अलग हैं, वो ना तो डरते हैं मुझसे और ना मैं उन्हें डराती। उन्हें बीवी की अदालत में पेशी देनी नहीं पड़ेगी और ना ही कभी झुकना पड़ेगा। दिनकर जी और जज साहब एक साथ बोले, वेट एंड वॉच। आरवी दोनों की ओर देखते हुए बोली, ऐसा क्या, ठीक है तो देख लेंगे, अगर जरूरत पड़ेगी तो अदालत दोनों की होगी, वो भी एक, जहाँ सुनाया जाएगा तो सुना भी जाएगा और फैसला भी मिलकर लेंगे। जज लॉयर सब कुछ हम खुद ही होंगे, खुद ही संभाल लेंगे, मामले से खुद ही दोनों मिलकर निपट लेंगे। ये सुन दिनकर जी और जज साहब ने आरवी की ओर थम्स अप कर दिया। आरवी मुस्कुरा उठी। जज साहब चाय का आखिरी घूंट पीकर कप को टेबल पर छोड़ते हुए बोले, चलिए अब इजाजत दीजिए दिनकर जी, जाना पड़ेगा, फिर जल्द मुलाकात होगी। दिनकर जी बोले, जरूर होगी मुलाकात, इस बार सिर्फ चाय पी है, अगली बार खाना भी खाना होगा। आरवी बोली, जी और जज दादू ढेर सारी फुर्सत के साथ आइएगा, आपकी अच्छे से आवभगत करेंगे, हमारे दादू के दोस्त हैं आप, सिर्फ चाय पानी नहीं चलेगा। जरूर, कहते हुए जज साहब सोफे से उठ गए। उनके साथ साथ दिनकर जी और आरवी भी खड़े हो गए। देवेंद्र जी ने दिनकर जी से हाथ मिलाया और आरवी के सिर पर प्यार से हाथ रखकर वहां से चले गए। उनके जाते ही आरवी ने दिनकर जी की ओर देखा जो खुश नजर आ रहे थे। आरवी उनके पास आकर बोली, खुश तो बड़े होंगे ना आप बॉयफ्रेंड? दिनकर जी वापस सोफे पर बैठते हुए बोले, बहुत गुड। वैसे दादू कुछ पूछें आपसे, कहती हुई आरवी उनके पास बैठ गई। हाँ, दिनकर जी ने हाँ में सिर हिलाया। ये जो आपके दोस्त हैं देवेंद्र कुमार, जो कि जज साहब हैं, जो अभी हमारे जज दादू बने हैं, जब डिवोर्स लेने गए थे हम कोर्ट में, तब हमें इन्होंने जो फैसला सुनाया था जज की कुर्सी पर बैठकर, वो आपके दोस्त हैं मिस्टर मेहरा को जानते हैं इसलिए सुनाया था, या वो आपके दोस्त ना होते तब भी वही फैसला सुनाते, हमें और मिस्टर मेहरा को साथ रहने के लिए कहते? ये सुन दिनकर जी ने आरवी का हाथ अपने हाथ में लिया। हम समझ रहे हैं आपके सवाल को भी और आप जो सोच रही हैं उसे भी। यहाँ हम बस इतना कहेंगे, देवेंद्र बहुत अच्छा और सच्चा न्यायाधीश है, किसी की सिफारिश पर स्वार्थी बनकर न्याय नहीं करता, फैसला नहीं सुनाता उस पक्ष के हक में जो उसका अपना है या जान पहचान वाला है। वो अपने फर्ज के प्रति निष्ठावान रहता है, काम अपनी जगह है उसका, रिश्ते अपनी जगह। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ जिसमें उसने गलत फैसला सुनाया हो, वो सब कुछ देख समझ कर ही डिसीजन लेता है और सही न्याय देता है। जब वो जज की कुर्सी पर बैठता है तब वो सिर्फ न्यायाधीश देवेंद्र कुमार होता है और कुछ नहीं। हमारा दोस्त ना होता तब भी वो आपको और आयांश को साथ रहने का ही फैसला सुनाता, ना कि तलाक की मंजूरी देता। आप दोनों को देखते ही जान लिया था उसने कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, ना कि अलग होने के लिए। ये सुन आरवी मुस्कुरा उठी और दिनकर जी के सीने से लगते हुए बोली, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे हम जज दादू से तो उन्हें स्पेशली थैंक यू कहेंगे, उन्होंने सही फैसला सुनाया था और उनका फैसला सही साबित भी हुआ। आज मैं और मिस्टर मेहरा साथ हैं और अब हमेशा साथ रहेंगे। दिनकर जी ने कहा और स्नेह भरा हाथ हार्वी के सिर पर रखकर उसका सिर चूम लिया। उसी शाम आयांश ड्राइव कर रहा था, तभी आयांश की नजर एक बच्चे पर पड़ी जो कि लेफ्ट साइड से सड़क की ओर भागा आ रहा था। बच्चे को आता देख आयांश की भौहें सिकुड़ गईं। व्हाट द हेल, कहते हुए आयांश ने उसी वक्त अपनी गाड़ी के ब्रेक लगाए क्योंकि वो बच्चा उसकी गाड़ी के सामने आ गया था। आयांश के ब्रेक लगाने से वक्त रहते गाड़ी उस बच्चे से थोड़ी दूर ही रुक गई, वरना उस बच्चे को चोट आ जाती। पर वो बच्चा आयांश की गाड़ी को सामने देखकर डरकर नीचे गिर गया और रोने लगा। आयांश उसी पल गाड़ी से उतरा और उस बच्चे की ओर भागा, पर वो उस बच्चे के पास जाकर उसे देखता इससे पहले एक आदमी वहां भागा आया और उस बच्चे को गोद में उठाकर चूमने लगा। गुड्डू तुम ठीक हो? कहा था ना गुड्डू पापा ने तुम्हें, मत भागो चोट लग जाएगी। गुड्डू तुम पापा की सुनते क्यों नहीं? तुम्हें कुछ हो जाता तो गुड्डू पापा का क्या होता? मेरा बच्चा कहीं लगी तो नहीं? वो आदमी बोलते हुए उस बच्चे के हाथ पैरों को टटोलने लगा।
वो आदमी उस बच्चे का पिता था जो अपने बच्चे की फिक्र में बहुत परेशान हो गया था, डर गया था कहीं उसके बच्चे को चोट तो नहीं लगी। अपने बच्चे को रोते देख उसकी भी आंखें छलक उठी थी और वो बच्चा पापा कहते हुए अपने पापा की गोद में सुबकते हुए उससे लिपट चुका था। आयांश उस आदमी को डांटने वाला था अपने बच्चे का ध्यान न रखने को लेकर, पर उसे अपने बच्चे की परवाह में घबराया देख आयांश उससे कुछ नहीं कह पाया। आयांश वहीं खड़ा बिना किसी हाव भाव के उन्हें देख रहा था। जैसे ही उस आदमी को सबूरी मिली उसका बच्चा ठीक है, उसने एक बार फिर अपने बच्चे को चूमा, उसके आंसू अपने हाथों से पोछे, उसे बहला फुसलाकर रोते को चुप करवाया और फिर अपने गले से लगा लिया। तभी उस आदमी की नज़र आयांश पर पड़ी। वो आंखों के किनारे साफ कर आयांश से बोला, धन्यवाद साहब, आपने बच्चे को आते देख समय रहते जल्दी से अपनी गाड़ी रोक ली, वरना मेरे बच्चे को चोट लग जाती। मेरा बच्चा ठीक है, कुछ नहीं हुआ इसे, इसे कुछ हो जाता तो मेरी तो जान ही चली जाती। बहुत प्यार करता हूँ मैं अपने बच्चे से, बोला था मैंने इसे भागना मत, पर बच्चा है ना नादान, अब हाथ नहीं छोड़ूंगा इसका। शुक्रिया साहब, मेरे बच्चे की जान बच गई आपकी वजह से और आपने मेरी ज़िंदगी भी बचा ली। जान है ना मेरी, मेरा बेटा, भगवान आपका खूब भला करे। इतना बोल वो आदमी अपने बच्चे को लेकर वहाँ से चला गया। आयांश ने कुछ रिएक्ट ना किया, ना कुछ कहा, वो बस उन्हें जाते देख रहा था। उस आदमी ने जो आयांश से कहा और जिस तरह वो अपने बच्चे को वहां से ले जाते हुए दुलार कर रहा था, साफ नजर आ रहा था कि वो अपने बच्चे से कितना प्यार करता है। और इस वक्त उसे चोट लग जाती, उसे कुछ हो जाता, एक्सीडेंट हो जाता तो, इन ख्यालों ने उस आदमी को अंदर से हिला कर रख दिया था। अभी भी वो डरा सा था जो उसके हाव भाव से साफ पता चल रहा था। अभी जो हुआ था आयांश की आंखों के सामने, उसके चलते उसका मन विचलित हो उठा। तभी आयांश के कानों में कुछ लफ्ज गूंजने लगे, अंश ध्यान रखो अपना, कितनी बार कहा मैंने चोट लग जाएगी, आप जान हो डैड की, पता है ना आपको। तभी आयांश ने अपने कानों पर हाथ रख आंखें मूंद ली और एक याद ने उसे आ घेरा क्रमशः।